कल वेणु गीत में हम 13वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, जिसमें गोपियां ये वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि का असर ब्रज के गाय और बछड़ों के ऊपर किस तरह से हो रहा है। गाय अपने कानों को ऊपर करके उत्तभित कर्णपुट ही पूरी तरह से इस बांसुरी के ध्वनि के अमृत का पान करना चाहते हैं, हर एक बूंद को पीना चाहते हैं अपने कानों के द्वारा। आंख बंद करते हैं, पूरी तरह से ध्यान लगाकर इस ध्वनि में मग्न हो जाते हैं, अपने हृदय में श्री कृष्ण को समा लेते हैं और उनका आलिंगन करते हैं और इतनी तीव्र प्रेम की भावना की अनुभूति करने की वजह से उनकी आंखें आंसू से भर जाते हैं, साथ साथ वो स्तब्ध रह जाते हैं, हिल नहीं सकते हैं। जब बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं उस समय जो भी वो कर रहे होते हैं बस उसी कार्य में वैसे के वैसे रह जाते हैं। गाय घास चबा रहे होते हैं, चबाना बंद कर देते हैं और घास को बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, तो आधा घास जो है मुंह के बाहर भी रहता है, धीरे धीरे से नीचे गिर जाता है। जो गाय के बछड़े दूध पी रहे होते हैं वो ना तो दूध को बाहर निकाल सकते हैं मुंह के, ना तो निगल सकते हैं, और मुंह दूध से भरा हुआ है लेकिन अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, और इस तरह से धीरे धीरे थोड़े बूंद दूध के गिरते जा रहे हैं। मां के स्तनों को मुंह में लिया हुआ है उन्होंने लेकिन मां के स्तनों को छोड़ भी नहीं सकते और दूध पी भी नहीं सकते, और ये दशा है गौओं की और बछड़ों की। और वात्सल्य प्रेम से गौओं के स्तन दूध दे रहे हैं, क्योंकि बछड़े नहीं पी रहे हैं तो पृथ्वी माता इस दूध का पान कर रही है, क्योंकि ये दूध अमृत है। वैसे भी गाय का दूध अमृत तुल्य है लेकिन इन्हीं गायों के स्तनों से स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूध पी चुके थे कई बार, इसलिए भगवान के सुंदर होठों का अधरों का स्वाद इस दूध में अवश्य आना था, तो पृथ्वी माता भी इस अमृत का पान करने के लिए लालायित थी। गौओं का प्रेम यशोदा माता की तरह है, हालांकि इतना ऊंचा इतना तीव्र नहीं है, परंतु रति या रस वही है। जब गाय बछड़े होते हैं स्वच्छ रति होती है, मतलब अभी तक उनका वात्सल्य प्रेम विकसित नहीं होता है, प्रेम करते हैं कृष्ण से लेकिन कोई विशेष रस में नहीं, लेकिन जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर वात्सल्य भाव का विकास होने लगता है। और अब जो गाय हैं वो पहले बछड़े थे, जबकि श्री कृष्ण कुमार अवस्था में और पौगंड अवस्था के शुरुआत में जो उनको चराने ले जाते थे, इतने सालों का संग होने के बाद स्वाभाविक है कि उनको श्री कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र आसक्ति हो गई थी, और इसलिए वो अन्य किसी भी ग्वाल के साथ जाते नहीं थे, केवल कृष्ण के साथ जाते थे। और अगर वो गर्भवती थे या उनके कोई छोटे छोटे बछड़े थे तो वापस वहीं पर व्रज में रह जाते थे नंदगांव में। हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से कृष्ण भगवान के या नंद महाराज के गाय कितने हैं, इनमें से नित्य सिद्ध भी हैं गाय, साधना सिद्ध गाय भी हैं, जैसे कि गोपियों के साथ में था, बल्कि सारे ब्रजवासियों के साथ ऐसे है। किस तरह से कृष्ण अपने विभिन्न गायों को बुलाते थे शाम के समय, अलग अलग रंगों के गाय हैं, अलग अलग तरह के गाय हैं, इनके बारे में भी हम सुन रहे थे। हम ये भी सुन रहे थे कि नंद महाराज के गौशालाएं कितने ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, और ब्रज में क्या-क्या चलता था ये भी हम सुन चुके हैं। जगह-जगह गायों का दोहन चल रहा था और लोग इधर-उधर सुंदर कपड़े पहने हुए कृष्ण कथा करते थे। महिलाएं वहां पर बैठ के गोबर के कंडे बनाते थे, गोबर के और गोबर के कंडों के पहाड़ हुआ करते थे, और इस तरह से बड़ा रम्य वातावरण, हरियाली सब जगह फैली हुई। तो यही वातावरण हम हमारे गोकुल धाम में कराना चाहते हैं। गोकुल धाम भी यही गोकुल है, वृंदावन, गोकुल या गोलोक, जहाँ इसी तरह से कृष्ण केंद्र में हो, कृष्ण कथा करें वहाँ के निवासी, बस कोई प्रजल्प नहीं, केवल कृष्ण भगवान के बारे में बात करें और गाय की सेवा करें, खेती करें, दूध पिए, हृष्ट पुष्ट हो जाएं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। तो अब गोपियों की नजर गायों से हटकर अब जा रही है पक्षियों के ऊपर। गोपियों का मन बड़ा चंचल है, विचलित है। भक्ति का ये एक रहस्य है। जब सबसे पहले हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमारे चंचल मन को हमें वश में करना चाहिए, और अर्जुन का श्लोक यही है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुर इव सुदुष्करम, कि मन बहुत चंचल है, सुदृढ़ है, बलवान है, हठी है, जिद्दी है, इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है। तो फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, ठीक है कि ये मुश्किल तो है परंतु संभव है, अभ्यास ये न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करो, वैराग्य करो, फिर तो मन को वश में कर पाओगे। तो हम कितने सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, केवल मन को शांत करने के लिए, मन की चंचलता का दमन करने के लिए। और फिर हमें कहा जाता है कि आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करो और वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलो, और खास करके गोपियां सबसे ऊंचे स्तर के भक्त हैं, उनका अनुशीलन करो, उनको अपना आदर्श रखो, उनकी तरह बनने का प्रयास करो। तो गोपियों का मन कैसा है? चंचल है। तो रही वही बात, थे था हमारा मन चंचल, अब फिर से चंचल मन की ओर चले गए। तो लेकिन इन दोनों चंचलताओं में बहुत अंतर है। उनकी चंचलता और उनका बड़बड़ाना या बोलना, वो महाभाव है, भक्ति का सबसे ऊंचा लक्षण है, जिसमें कि वो तीव्र आनंद की अनुभूति करते हैं। सांसारिक मन की चंचलता और बड़बड़ाना ये तो माया का खेल है। तो अब गोपियों का मन भटक गया है गौओं से, और जहां भी वो नजर डालते हैं वहां पे वो महाभावी देखते हैं, वहां पे वो कृष्ण प्रेमी देखते हैं। तो अब उनकी नजर चली है वृंदावन के पक्षियों के ऊपर, और वो देखते हैं कि ये पक्षी कितने सुंदर तरीके से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। इस श्लोक में वो पक्षियों की तुलना मुनियों से करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इस श्लोक की चर्चा करें, इन शब्दों का विवरण करें, इसके पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे उन पक्षियों की जो कि वृंदावन में पाए जाते हैं, खास करके उन पक्षियों के जो ज्यादा संख्या में हैं या जिनका ज्यादा महत्व ब्रज में है। पक्षियों के बारे में सुनना चाहते हैं आप वृंदावन के? ये भी कोई साधारण प्राणी नहीं है, आखिर ये भी ब्रजवासी हैं। और हम जानते हैं कि जो भी वृंदावन में रहता है, जो भी ब्रज में जन्म लेता है, वो कोई साधारण जीव नहीं है, या तो वो नित्य सिद्ध है या तो साधना सिद्ध है। इसका मतलब है कि सब सिद्ध जीव ही वहां पर रहते हैं, तो ये पक्षी भी कोई साधारण पक्षी नहीं है। तो अगर गोपियां इन पक्षियों के बारे में बोलना चाहते हैं, और हम अगर यहां हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए। वृंदावन के पक्षियों के बारे में बातचीत करके भी हम हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। देखिए आध्यात्मिक जीवन का रहस्य कैसा है। तो वृंदावन क्योंकि इतना रम्य स्थान है, हरियाली इतनी है, इतने पेड़ पौधे हैं, सुंदर फूल हैं, इतना सुंदर स्थान होने के नाते वहां पे सरोवर, कुंड, नदियां इतनी सारी हैं, पवन भी बहुत अच्छा है, सब जगह सुगंध है, तो स्वाभाविक है कि वहां पक्षियां बड़ी संख्या में आएंगी और तरह तरह की पक्षियां आएंगी। तो वृंदावन में भी आती हैं। वृंदावन में हम पक्षियों का विभाग कर सकते हैं, दो भागों में कर सकते हैं। एक भाग में हम तीन पक्षियों का वर्णन करेंगे और दूसरे भाग में आए अन्य सारे पक्षियां जो भी वृंदावन में हैं। तो पहले श्रेणी में पक्षियों में आते हैं मयूर, कोयल और तोते। तोते मतलब पोपट। तो इन तीनों का वर्णन हम अब करेंगे। सबसे पहले आई बात मयूरों की। मयूरों के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं कई दिन पहले, और उनके भक्तिमय नृत्य के बारे में भी हम सुन चुके हैं। जैसा आप जानते हैं मयूर ये बारिश को बहुत पसंद करते हैं। जब बरसात का मौसम आता है और वो बरसात के बादलों को देखते हैं, बड़े हर्षित हो जाते हैं और ऐसे हर्ष की अवस्था में वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वैसे मयूर जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन वृंदावन में ऐसे कई मयूर हैं जो सफेद भी हैं। तरह तरह के मयूर होते हैं। हम सुन चुके हैं कि भगवान कृष्ण ने इन मयूरों के साथ में जुगलबंदी की थी, नृत्य किए थे। बरसाना में मोर कुटीर है, जिस मोर कुटीर में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर नृत्य की थी। एक मोर के साथ उन्होंने स्पर्धा किया था नृत्य के लिए और श्रीमती राधा रानी वहां पे जजमेंट दे रही थी, निर्णय दे रही थी कि किसने अच्छा नृत्य किया है। वहां पे बरसाना में आने के बाद में श्रीमती राधा रानी ने एक बार कहा कि अरे यहां तो कोई मोर दिखाई नहीं पड़ते। तो उस समय स्वयं भगवान कृष्ण ने मोर की तरह नृत्य करके गोपियों का मनोरंजन किया था। तो यह है बरसाना का मोर कुटीर। तो तीन चार दिन पहले मोरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज हम यहां ज्यादा मयूरों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। केवल इतना ही याद दिलाएंगे कि मोरों के गुरु हैं श्री कृष्ण। मोरों का जो मोरों की विशेष जो कला है वो है नृत्य करना। मोर गाते नहीं है लेकिन सुंदर नृत्य करते हैं, और नृत्य कला में उनके गुरु हैं श्री कृष्ण जो कि नटवर हैं। ब्रह्मा पीडम नटवर बहुः कर्णयोः कर्णिकारम्। तो नटवर होने के नाते श्री कृष्ण जैसा कोई भी नृत्य नहीं कर सकता। शिवजी को नटराज कहते हैं, नटों में से राजा, लेकिन शिवजी से भी श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण, जिनको नटवर कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण के बांसुरी से स्वयं शिवजी भी नृत्य करना शुरू कर देते हैं, और अगर नृत्य कर रहे होते हैं तो अपनी डमरू बजाना भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। तो यह है श्री कृष्ण और मयूरों के बीच में संबंध। अब आई बात कोयलों की। वृंदावन में बहुत सारे कोयल या कोकिल रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कोई अगर बहुत मीठे स्वरों में गा सकता है तो उसकी तुलना कोयल की तरह कहते हैं कि ये कोयल की तरह सुंदर गीत गाता है। और ये जो कोयल होते हैं खास करके आम के पेड़ों को ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे छोटे आम के फलों को, उनके अंकुरों को वगैरह खाकर उनकी बोली बहुत मीठी हो जाती है, और इसलिए वो बहुत सुंदर ढंग से गा सकते हैं। वो बढ़ते हुए स्वरों में कुहू 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 ऐसे गाते हैं बार बार, और जैसे गाते हैं उनका स्वर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। ब्रज में एक स्थान है जिसको कोकिल वन कहते हैं, एक वन है, और ये भी जावट या नंदग्राम के पास में है। नंदग्राम तो नंद महाराज का गांव है, जहां श्री कृष्ण किशोर अवस्था में निवास करते थे, माधुर्य रस का स्वाद लेते थे। और जावट श्रीमती राधा रानी का गांव है। विवाह के बाद वो वहां पर चली गईं। वैसे तो वो बरसाना में रहती थी, उनका जन्म हुआ था रावल में, रावल से चली गई बरसाना, और फिर विवाह होने के बाद अपने पति अभिमन्यु के घर चली गईं जावट में। उनके सास का नाम है जटिला, तो हमेशा जटिला के नजर में रहती हैं श्रीमती राधा रानी, क्योंकि जटिला को हमेशा संशय रहता है कि श्रीमती राधा रानी अब कृष्ण के पास जाएंगी। तो खैर, यावट और नंदग्राम के पास में है ये कोकिला वन, और यहां पर श्री कृष्ण कभी कभी आते हैं और सुंदर कोयल की तरह गीत गाते हैं। जब भी श्री कृष्ण गोपियों का संग करना चाहते हैं तो यहां पर आते हैं, अपना वेश बदलते हैं, और गोपियां उनकी बहुत सुंदर आवाज सुनकर, उनका गीत सुनकर, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर आ जाती हैं कोकिला वन में। आप सुन चुके हैं कि वृंदावन में भी जब वंशी वट में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मुरली के तान को सुनकर, उस समय सारे गोपियां जो है अपने अपने घर को छोड़कर, जो भी कार्य कर रहे होते हैं उनको त्याग कर सीधे वंशीवट भाग कर आते हैं। तो उसी तरह से उतनी मधुर श्री कृष्ण की कोकिल वाणी है। हालांकि वैसे राधा रानी को कोकिल वाणी कहा जाता है, परंतु श्री कृष्ण भी कभी कभी कोयल की नकल करते हैं, कोयल का वेश भी पहन लेते हैं, और इस समय गोपियां भाग के चली आती हैं। इतना सुंदर गाते हैं श्री कृष्ण कोयल की आवाज में कि एक बार जटिला भी प्रभावित हो गई। जटिला को पता नहीं था कि ये श्री कृष्ण गा रहे हैं, उन्होंने सोचा कि कोई कोयल गा रही है। तो जटिला का जो कठोर हृदय है वो भी प्रभावित हो गया, और श्रीमती राधा रानी के साथ चर्चा कर रही थी कि देखो कोयल कितने सुंदर गा रहे हैं आज, आज तो कोई विशेष गीत इनका है। तो श्रीमती राधा रानी तो पहचान गई कि कौन गा रहे हैं, तो बोले कि मैं जाके देखूं कौन है। तो जटिला भी इतनी प्रभावित हो गई, तो ठीक है जाके देख के आओ, मुझे आके खबर देना कि आज वो कौन से गीत गा रही है कोयल। तो श्रीमती राधा रानी गई, कृष्ण के साथ में रही और वापस आई बाद में। तो इस तरह से कोकिल वन में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर लीलाएं की थी। यहां कोकिल वन में राधा कोकिल वन बिहारी जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर, और यहां पर कृष्ण कोकिल वन बिहारी के नाम से विख्यात है, जो कोकिल वन में विहार करते हैं कोकिल की तरह या कोयल की तरह। और साथ साथ इस मंदिर में नरसिंह देव की मूर्ति है, प्रहलाद महाराज भी वहां विराजे हैं, और कपिल मुनि की मूर्ति भी वहां पर दिखाई पड़ती है। तो ये रही कोकिल वन की बात। और एक तरह के कोयल हैं जिनको पपीहा कहते हैं। अन्य जो कोयल हैं वो तो कुहू कुहू कहते हैं, लेकिन ये जो पपीहा है पिकहा 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 कहते हैं। तो हमारे प्रेमी कहाँ है, हमारे प्रेमी कहाँ है, हमारे प्रेमी कहाँ है, ये कह रहे हैं। तो ये गोपियों के लिए और कृष्ण के लिए तो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और खास करके जब गोपियां विरह के भावना में पीड़ित होती हैं, विरह की अग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित रूप से जल रही होती है, तो इन पपीहों के सुंदर बोली को सुनकर उनके हृदय की अग्नि का थोड़ा बहुत शमन हो जाता है, उनको थोड़ी बहुत शांति मिलती है कि ठीक है, केवल हम अकेले इस विरह के भावना में नहीं हैं, ये कोयल भी जो हैं ये भी अपने प्रेमियों के लिए तरस रहे हैं। इस तरह से कोयलों का जो कार्य है वृंदावन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही बात मयूरों की और कोयलों की। अब तीसरे जो पक्षी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पोपट या तोते। वृंदावन के वृंदावन में तो हरे रंग के पोपट लाखों की संख्या में है। आप अगर वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे जगह जगह पर पोपट दिखाई पड़ेंगे आपको, और आसानी से पाले पोसे जा सकते हैं और इनको सिखाया जा सकता है बोलने के लिए। यहां भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि लोग पोपट को पालना पसंद करते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसे भौतिक चीज सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे कई पोपट एक व्यक्ति के घर में गए थे हम, तो अंदर आए तो गुड मॉर्निंग चला, तो कहाँ से आ रही आवाज, देखा पोपट को उन्होंने सिखा के रखा था। तो ऐसे लोग पोपट के द्वारा ऐसे आवाज सुनना पसंद करते हैं, पोपट जल्दी सीख भी जाते हैं, जो आप बोलेंगे वही दोहराएंगे, सोचेंगे नहीं। इसलिए बताया जाता है कि कुछ सीखना है तो पोपट की तरह नहीं सीखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मतलब केवल कंठस्थ करके कुछ बोलना, जैसे आजकल हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो पोपट की तरह लोगों को सिखाते हैं, बस बस कंठस्थ करो, समझने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, जो कंठस्थ किया है वो जाके परीक्षा में लिख के आओ बस। तो पोपट की तरह सीखना मतलब कंठस्थ करना। लेकिन वृंदावन में जो पोपट हैं वो बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण का गुण, गुणों का वर्णन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, राधा रानी की कथा करते हैं वो। और क्योंकि वो बोल सकते हैं अच्छी तरह से, इसलिए उनको दूत बनाया जाता है, जासूस। ये सारे जो तोते होते हैं वृंदावन के, ये अलग अलग जासूस होते हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन जासूसों का बहुत महत्व होता है, हर एक देश में जासूस होते हैं, और वो अपने जासूस दूसरे देशों में भेजते हैं, और हर एक दूतावास में कोई ना कोई उस देश के जासूस रहते हैं, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो उनका काम क्या है, इधर की खबर उधर ले जाना। तो ये तोते भी होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, खास करके वो खबर ले जाते हैं श्री कृष्ण के लिए और श्रीमती राधा रानी के लिए। श्री कृष्ण के थोड़े बहुत निजी तोते होते हैं, श्रीमती राधा रानी के भी निजी तोते होते हैं, और वो अपने अपने कार्यों के लिए उनको खबर देते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण दान घाटी लीला कर रहे थे, जिसके बारे में हम दो दिन पहले सुन रहे थे, नंद महाराज ने एक यज्ञ संपन्न करना चाहा कृष्ण बलराम के संरक्षण के लिए, और उस समय श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों के साथ में दही घी वगैरह लेकर जा रही थी, और उस समय श्री कृष्ण को पता चला, और उन्होंने अपने तोते से कहा, जिसका नाम है विचक्षण, उनका पाला हुआ तोता है, उनसे कहा कि जाके जरा पता करो कि श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां कौन से रास्ते से आ रही हैं, क्योंकि मुझे कर वसूल करना है। वैसे मैं वृंदावन के राजा का पुत्र हूं और कर वसूल करना मेरा काम है, और ये लोग बिना कर दिए चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मेरे सारे ग्वाल बालों को कर वसूलक के वेश पहना दूंगा और मैं भी वहां पर खड़े हो जाऊंगा। लेकिन ये गोपियां बड़ी चालाक हैं, कर नहीं देने वाली हैं, इसलिए वो दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, तो तुम पता करना वहां जाके कि कौन से रास्ते से निकल रही हैं। तो विचक्षण के लिए ये बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि वो जाके जासूसी करेंगे तो गोपियां कम चालाक थोड़ी हैं, गोपियों को भी तो तोते हैं, और वो तोते उनको पहचान लेंगे कि कृष्ण के जासूस आए हैं, तो वो गलत रास्ते पे डालेंगे इनको, तो गलत खबर देंगे। इसको अंग्रेजी में मोल कहते हैं, मतलब जो व्यक्ति एक जगह जाकर दूसरे देश में जाकर जासूसी करता है, और वहां के जासूस फिर उसको गलत रास्ते में कुछ गलत खबर देते हैं, ताकि वो गलत खबर वापस अपने देश में देगा। तो बहुत कठिन कार्य था विचक्षण के लिए, और सब जगह राधा रानी को खबर देने वाले थे, पशु पक्षी बहुत सारे, तो किस तरह से सही खबर निकाली जाए और धोखे में न पड़ जाए कृष्ण, ये विचक्षण के लिए बहुत बड़ा कार्य था। खैर विचक्षण सफल हो गए, किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से छुप छुप कर खबर निकाली कि कहां से जा रहे हैं गोपियां, और फिर कृष्ण को दे दी, और कृष्ण भगवान अपने गोपों के संग में वहां खड़े रह गए, कर वसूल किया, बहुत वाद विवाद वहां पर हुआ दोनों के बीच में, जैसे कि यहां हम देखते हैं कोई भी कर देना नहीं चाहता, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आपको इतना देना है, तो फिर व्यापारी बोलेगा नहीं नहीं इतना क्यों, हमको इतना देना है केवल, आखिर में देना पड़ता है। तो उसी तरह से श्रीमती राधा रानी को भी आखिर में देना पड़ा, तो दे दिए, आगे चले गए। तो ऐसे कार्य तोते करते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों के लिए उनको रखा जाता है। और श्रीमती राधा रानी, उनके भी तोते हैं और उनके तोते वो अपने कार्य करते हैं। वैसे वृंदावन का नाम वृंदा देवी के पीछे रखा गया है। तुलसी महारानी है वृंदा देवी, गोलोक वृंदावन में हो, वृंदा वृंदा के नाम से जानी जाती हैं, और वैकुंठ में और इस भौतिक जगत में तुलसी के नाम से जानी जाती हैं। वृंदा देवी का गांव है वृंदावन, और उनका बहुत महत्व है वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन में जो भी लीलाएं होती हैं, या वृंदावन के अंदर जो नाट्य लीला चल रही है, उसके डायरेक्टर है। सारी योजनाएं, सारी व्यवस्था करती हैं वृंदा देवी। भगवान श्री राधा कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए, उनका रस बढ़ाने के लिए, और इसलिए इस कार्य में उनकी सहायता करने के लिए लाखों लाखों तोते हैं। और वृंदा देवी उनको जगह जगह भेजती हैं कि खबर देते रहो मुझे। जैसे एक अखबार जो होता है, अखबार में कई पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जो जगह जगह से खबर देते हैं। अखबार उनको फैला के रख देती है कि तुम बेंगलोर में बैठो, तुम मद्रास में बैठो, तुम यहां बैठो, वहां जो भी खबर होगी हमारे अखबार को भेज देना। तो उसी तरह से ये पोपट सारे ब्रज में सब जगह फैले हुए हैं, और जब भी कोई खबर होती है तो वृंदा देवी को खबर लाते हैं। देखो आज आज ऐसे हुआ, गोपी आज वहां जा रही हैं और कृष्ण आज ये कर रहे हैं। तो उनकी लीला के लिए जो अनुकूल है, पर वैसी व्यवस्था वृंदा देवी कर देती हैं। तो ये सब बड़े रहस्यमय चीजें हैं, और कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलता कि वृंदा देवी कैसी योजनाएं कर रही हैं, क्या अवस्था कर व्यवस्था कर रही हैं। तो खैर, ये एक काम है उनका, संदेश ले जाना, ले आना, खबर देना। और दूसरा काम जो वहां के तोते करते हैं, वो है राधा कृष्ण का गुणगान करना। इसमें बड़े निपुण है वो, और खास करके प्रातः काल के समय वो राधा कृष्ण को अपने अपने नींद से जगाते हैं। तो ये तोतों का महत्व बहुत ज्यादा है वृंदावन में। वृंदावन में कई तोते हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध तोते हैं जिनका नाम है शुक। वैसे तो शुक और शारी, तोते का जो पुल्लिंग है वो शुक और स्त्रीलिंग है शारी। तो शुक मतलब कौन? शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवत कहा महाराज परीक्षित को वृंदावन की लीला में, ये शुक है, ये एक तोते हैं। वैसे ये श्रीमती राधा रानी के पाले हुए, पोसे हुए तोते हैं, श्रीमती के राधा रानी की सेवा करते हैं। और श्री कृष्ण के निवेदन पर वो यहां पर भागवत बोलने के लिए आ गए। जब श्री कृष्ण अपनी प्रकट लीला यहां धरातल पर समाप्त करके स्वधाम लौटने वाले थे, तो उन्होंने शुक को बुलाया और कहा कि अभी इन लीलाओं को यहां जागृत रखना है। ऐसा न हो कि मैं यहां पे लीला करके चले जाऊं और यहां लोग लीलाएं भूल जाएं, फिर क्या फायदा? मैं यहां प्रकट होता हूं भौतिक जगत में मेरी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि इन बद्ध जीवों का हृदय आकृष्ट हो जाए मेरी लीलाओं के प्रति, और उनके मन में ये लालसा हो कि वृंदावन के भाव में मेरी सेवा करें और मेरे गोलोक वृंदावन को प्राप्त करें। लेकिन जब तक वो मेरी लीलाओं को सुनेंगे नहीं, तब तक ये लालसा कैसे उत्पन्न हो सकती है उनके मन में। इसलिए हे शुक, तुम आगे चल के श्रीमद् भागवत का कथन करना, जाके तुम महाराज परीक्षित को ये भागवत सुनाना, ये सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तुम केवल चलते रहना, आगे चल के तुम्हें ये श्रीमद् भागवत सुनाना है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इंतजाम कर लिया सब कुछ। तो वो कथा तो आप सब जानते हैं कि कैसे महाराज परीक्षित को शाप मिल गया श्रृंगी ऋषि द्वारा, शम्यक ऋषि के पुत्र, और फिर वो सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आए जहां पर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि कृपया बताइए कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर खड़ा है उसके लिए क्या उचित है और क्या नहीं है, उसे क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, किसको पूजना चाहिए किसको नहीं पूजना चाहिए। और वहां उपस्थित जो ऋषि मुनि थे उनके भिन्न मत हो गए और परीक्षित महाराज को पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। अलग अलग ऋषि अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन उस समय सुखदेव गोस्वामी वहां पर पधारे। उनके पीछे पीछे कोई महिलाएं थी, बच्चे थे जो उनको मजाक उड़ा रहे थे। वो सोच रहे थे ये कोई पागल व्यक्ति है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अवधूत थे, सामाजिक कोई नियमों के लिए कोई परवाह नहीं करते थे, निर्वस्त्र अवस्था में घूम रहे थे और लोग साधारण लोग अज्ञानी होने की वजह से उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी इस स्थान पर पधारे, इन सारे ऋषि मुनियों ने तुरंत उनको पहचान लिया कि ये तो महाभागवत है। सब खड़े हो गए सिवाय नारद मुनि और व्यासदेव, जो कि उनके उनसे ज्यादा जो उनके बुजुर्ग थे उनके दृष्टि से। और जब इन महिलाओं ने बच्चों ने देखा तो घबरा गए कि अरे ये तो कोई महान संत हैं, इनको तो हम पागल समझ रहे थे, हम इनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, भाग के चले गए वहां से। और फिर यही प्रश्न सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज को किया और फिर सुखदेव महाराज ने जो उत्तर दिए ये है श्रीमद् भागवत। और सारे वहां के ऋषि मुनिगण बैठे सुनने के लिए। वैसे श्रीमद् भागवत की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी से नहीं हुई, श्रीमद् भागवत की शुरुआत तो स्वयं भगवान से हुई। भगवान ने मूल रूप में संक्षिप्त रूप में चतुःश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया था, चार श्लोकों में भागवत। ब्रह्मा जी ने इन श्लोकों को सुनकर समझकर अपने शिष्य नारद मुनि को सुनाया थोड़ा बढ़ाकर। नारद मुनि ने आगे चल के अपने शिष्य श्रील व्यास देव को सुनाया, श्रील व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी वैसे जन्म से ही मुक्त पुरुष थे, लेकिन ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब जो निराकार ब्रह्म की उपासना करना पसंद करते थे, लेकिन मुक्त थे भौतिक जगत से। जब व्यास देव जी के पत्नी जाबाली देवी के गर्भ में प्रकट हुए, बाहर नहीं आना चाहते थे, 12 साल अंदर ही रहे। व्यास देव जी ने बहुत निवेदन किया कि बेटा आ जाओ, बहुत समय हो गया, इतना समय अंदर नहीं रहना चाहिए, 9 महीने रहते हैं बच्चे अंदर, तुम्हारे तो कई साल हो गए। तो बच्चे ने जवाब दिया मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आकर मैं माया में पड़ जाऊंगा, अंदर ही सही, मैं यहां ब्रह्म ध्यान कर सकता हूं। आखिर व्यास देव जी को द्वारका से स्वयं श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा और श्री कृष्ण के वचन के आधार पर सुखदेव जी बाहर आए। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं वचन देता हूं, तुम माया में नहीं पड़ोगे, चलो आ जाओ। तब वो बाहर आए और आने के बाद तुरंत चले गए बाहर। जब व्यास देव जी ने देखा कि अरे इतने सालों के बाद प्रतीक्षा करने के पश्चात अब मेरा बेटा बाहर आया है मां के गर्भ से, और सीधे चल पड़ा, क्योंकि मुक्त था जन्म से, गर्भ के भीतर भी मुक्त था, लेकिन हर पिता चाहता है कि बेटा मेरे साथ में रहे। तो हालांकि व्यास देव जी सारे वेदों का संपादन करने वाले महान ऋषि हैं, फिर भी देखिए पारिवारिक आसक्ति पुत्र स्नेह कितना ज्यादा होता है। हा पुत्र कह के व्यास देव जी उनके पीछे पीछे गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, दो रूप हो गए उनके। एक रूप वैरागी जैसे थे वैसे ही रहे, आगे वन में चले गए, और दूसरे रह गए पीछे वेद व्यास जी के पास में, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके वहां पर माता पिता के साथ में रहे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी ने भागवत सिखाया। और इस भागवत को सीखने के बाद सुखदेव गोस्वामी का मन निराकार भ्रम से हट गया और श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का आके अमृत का पान करने में वो 24 घंटे लग गए। अब कृष्ण भक्ति छोड़ नहीं सके। और ये जो श्लोक का वर्णन हम कर रहे थे, बरहा पीड़म नटवर वपु, वेणु गीत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है ये, बल्कि श्रीमद भागवत का सबसे सुंदर श्लोक कहा जाता है। फिर से कहना चाहते हैं श्लोक, सबको कंठस्थ है तो सब साथ में कहते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यह कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रार वेणोर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदौ वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में है। तो ये श्लोक को सुनकर शुकदेव जी खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए। वो वन में जाने वाले थे, लेकिन जब ये श्लोक सुना तो रुक गए। अरे इतना सौंदर्य, कौन है इतना सुंदर व्यक्ति? कृष्ण। लेकिन हालांकि वो कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुए इस श्लोक के माध्यम से, फिर भी उनके मन में एक संशय था। वो संशय था कि क्या ये सुंदर व्यक्ति मुझे स्वीकार करेंगे? तो उस समय सुखदेव जी के मन के संशय या मन के बात को जानकर वेद व्यासी के शिष्यों ने और एक श्लोक कहा। कौन सा श्लोक था वो? अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघ्राम सया पायत अप्य साधवी लेभे गतिम भातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये श्लोक उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया था। इसमें श्री कृष्ण के कारुण्य का, उनके करुणा या अनुकंपा की महिमा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी एक धात्री का, मतलब मां के समान स्थान दिया गोलोक वृंदावन में, जबकि पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी। तो यह है कृष्ण की कृपा। तो जब सुखदेव जी ने सुना कि कृष्ण इतने कृपालु भी हैं, न केवल सुंदर हैं, कृपालु भी हैं, तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, तब उनका मन शांत हो गया। तो इस तरह से सुखदेव जी अब कृष्ण भक्त बन गए। वैसे तो कृष्ण लीला में तो वो भक्त थे ही, वो तो शुक थे, श्रीमती राधा रानी के तोते थे। लेकिन जब नित्य सिद्ध कोई भक्त भी होते हैं, कृष्ण लीला में भाग लेते हैं, परंतु जब वो मनुष्य समाज में आते हैं मनुष्य देह लेकर, तब भी बाहरी रूप से ऐसे लगता है कि वो तपस्या करते हैं, उनको भी कुछ सीखना पड़ता है इत्यादि। जैसे वृंदावन के षड गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, वो भी भागवत पढ़ते थे, उन्होंने भी बहुत सारी तपस्या की, नियमों का, विधि विधानों का पालन करते थे। हालांकि वो नित्य सिद्ध जीव हैं जो कि गोलोक वृंदावन से यहां पर अवतीर्ण हुए हैं श्री कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए, परंतु जब मनुष्य देह प्राप्त होता है तो उनको मनुष्यों की तरह ही भगवत प्राप्ति के लिए कोई कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और ऐसा लगता है कि ये पहले निराकार में लीन होने की इच्छा रखते थे, ये कोई बाहरी लीला है। अंदरूनी बात तो ये है कि सुखदेव जी एक तोते हैं वृंदावन की लीला में, इसलिए शुक संहिता में भी नारद जी व्यास देव जी को कहते हैं कि अरे आप कितने भाग्यशाली हैं और आपका बेटा सुखदेव कितना भाग्यशाली है, उसने गुरुकुल में जाके कभी पढ़ाई नहीं की, उसने कोई तपस्या नहीं की, उसने इस भक्ति मार्ग के विधि विधानों का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। और न केवल दिव्य ज्ञान बल्कि भक्ति के सर्वोच्च शिखर पे वो स्थित हैं। इतने महान भक्त बन गए हैं केवल बचपन से ही, बिना कोई तपस्या किए हुए, बिना कोई शास्त्रों का अध्ययन किए हुए। तो यह है सुखदेव गोस्वामी का स्थान। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि इस संसार में भी दो तरह के भक्त या दो तरह के साधक सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रज लीला में दो तरह की गोपियां हैं, दो तरह के गाय हैं, दो तरह के गोपियां हैं। कौन से हैं? नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब वो जीव जो नित्य रूप से सिद्ध हैं, भगवान के धाम में उनके सानिध्य में निवास करते हैं, उनकी लीला में भाग लेते हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे नित्य रूप से। कभी भी किसी भी समय वो बद्ध अवस्था में नहीं थे इस भौतिक जगत में। परंतु जब श्री कृष्ण यहां पर अवतीर्ण होते हैं लीला प्रकट करने के लिए, उस समय ये उनके जो निकट के पार्षद हैं वो भी उनके संग यहां पर आते हैं, श्री कृष्ण के साथ में लीला करते हैं। ये है नित्य सिद्ध। और साधना सिद्ध वो जीव हैं जो इस भौतिक जगत में रह चुके हैं बद्ध अवस्था में, और यहां पे साधना करके कई जन्मों के बाद श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये है सिद्धि प्राप्त करने वाले जीव। लेकिन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग केवल साधना सिद्ध नहीं है, और एक भी सिद्धि प्राप्त करने वाले जीव हैं, उनको क्या कहते हैं? कृपा सिद्ध। मतलब ऐसे कृपा सिद्ध लोगों को, जीवों को तपस्या नहीं करनी पड़ती है, केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा मात्र से उनको संसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। साधना सिद्ध का एक उदाहरण रूप गोस्वामी कहते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर है। आने वाले किसी एक एकादशी में हम बिल्वा मंगल ठाकुर की चर्चा भी करेंगे, जब रामानुजाचार्य की कथा समाप्त हो जाएगी, फिर आलवरों की कथा, उसके बाद फिर बिल्वा मंगल ठाकुर, श्रीधर स्वामी इत्यादि, इनके बारे में, इनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण करणामृत नाम के ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, कृष्ण लीला का वर्णन इसमें आता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर साधना सिद्ध जीव के एक उदाहरण है, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। और कृपा सिद्ध के लिए रूप गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं। एक है मथुरा के यज्ञ पत्नी, श्रीमद् भागवत की उस लीला को आप जानते हैं अवश्य। श्री कृष्ण और बलराम जब अपने ग्वाल बालों के संग गायों को चराने के लिए गए थे वन में, तो सारे ग्वाल बालों को बड़ी भूख लग गई। कृष्ण के पास आए, कहने लगे कि हमारे भूख को मिटाओ, कुछ करो। तो श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा कि जाओ, वहां मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे पूछो। लेकिन उन ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। इनकार तो क्या, उन ग्वाल बालों की ओर देखा भी नहीं। और जब वो निराश होकर वापस आए तो श्री कृष्ण ने कहा अब उनके पत्नियों के पास जाओ। दोबारा जब वो पत्नियों के पास गए तो हालांकि पत्नियां यज्ञ मंत्र तंत्र इत्यादि में विशारद नहीं थे, फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण था, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में वो बहुत कुछ सुन चुके थे, कभी देखा नहीं था उन्होंने श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से, केवल कृष्ण का गुणगान उन्होंने सुना था, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण के सुंदर बांसुरी वादन, उनकी गोचारण लीला इत्यादि, और श्रवण करने मात्र से ही उनको आकर्षण हो गया था कृष्ण के प्रति। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि हम भी केवल कृष्ण लीला, कृष्ण नाम का श्रवण करने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए प्रमाण है यज्ञ पत्नियां और रुक्मिणी देवी भी। रुक्मिणी देवी ने भी श्री कृष्ण को देखा नहीं था अमरावती में, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे अलग अलग लोगों से, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो खैर यज्ञ पत्नियों ने सब कुछ दे दिया, जो भी यज्ञ अवशिष्ट था, भोजन सब कुछ दे दिया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि यज्ञ पत्नियां जो हैं ये कृपा सिद्ध जीव के एक उदाहरण है। और दूसरे उदाहरण रूप गोस्वामी कहते हैं यह सुखदेव गोस्वामी, उनको कोई तपस्या करनी नहीं पड़ी, यहां गुरुकुल में रहना नहीं पड़ा, विधि विधानों का पालन करना नहीं पड़ा, बैठ के उन्होंने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, व्याकरण न्याय कभी सीखा नहीं, वेदांत पढ़ा नहीं, सीधे भक्त बन गए बस। तो ये भगवान की कृपा, असीम कृपा उनके ऊपर आ गई। तो शुकदेव गोस्वामी अपने सिद्ध रूप में, वो तो शुक हैं, श्रीमती राधारणी के तोते, उन्होंने ब्रज में सारे लीलाओं को देखा था, इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन देने के लिए सबसे सही आदमी थे, उपयुक्त व्यक्ति थे वो। इसलिए भगवान कृष्ण ने शुक को चुना था कि आप जाकर महाराज परीक्षित को ये भागवत का प्रवचन देना। आप जानते हैं कि जब कोई तोता किसी फल को चखता है तो कहा जाता है कि उस फल का स्वाद बढ़ जाता है, वो फल और भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव ने किस फल को चखा? श्रीमद् भागवत रूपी फल को चखा, और इसलिए ये श्रीमद् भागवत और भी स्वादिष्ट हो गया। निगम कल्प तरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं बहुर अहो रसिका भू भावुकाः। व्यास देव जी स्वयं कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितं फलं। निगम मतलब वेद, वेद शास्त्र के लिए और एक नाम है निगम, नी गम, नी मतलब निकृष्ट, जो नीचे गिरता है, गम मतलब आना जाना। तो जो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे क्या आता है? ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण से जो संप्रदाय परंपरा शुरू हुए हैं, उनसे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा नीचे आता है। जो ऊपर से नीचे ज्ञान दिया जाता है वो वेद, वेदों का ज्ञान है। इसलिए वेद के लिए और एक शब्द है निगम, निगम महानगर निगम, वो है ना टेलीफोन वाले, वो भी कहते हैं ना निगम। तो निगम मतलब वेद। तो ये एक कल्प तरु है, कल्प तरु मतलब कल्प वृक्ष, जो हमारी सारे इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अब आप जानते हैं कि वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वृक्ष का असली मूल्य किस चीज से आता है? फल से। अगर आपके पास आम का पेड़ है, वो भी आपस के आम का, लेकिन कोई फल नहीं मिलता उस पेड़ से, तो क्या फायदा? कोई आप आपस आम का पेड़ घर में लगाएंगे किस लिए? ताकि आपको आपस आम मिले जिनको आप खा सकें। तो जो फल होता है वो वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये वेद कल्प वृक्ष का भी फल है, कई फल हैं वेद के वृक्ष में, लेकिन थोड़े ऐसे फल हैं जो खट्टे हैं, लेकिन ये एक फल है जो कि बहुत मीठा है, पक गया है, पका हुआ फल है, गलितम फलम। गलितम मतलब पका हुआ। अब जानते हैं कि आम जब कच्चा होता है तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन पक जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है। तो ये श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं व्यास देव जी, कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेदों का वृक्ष है, इसका सबसे पका हुआ मीठा मधुर फल है ये श्रीमद् भागवतम। पहले से ही मीठा है क्योंकि इसमें कृष्ण लीला है, कृष्ण मधुर है और कृष्ण की लीला मधुर है, तो श्रीमद् भागवत बहुत मधुर है। परंतु अब शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जब शुकदेव गोस्वामी ने इसको चखा है तो ये फल और भी मीठा हो गया है, अमृत, अमृत से भी ज्यादा मीठा हो गया है, द्रव संयुतम, और उसको पीने के लिए बहुत अच्छा है, आसान हो गया है अभी। वैसे कभी फल को खाया जाता है ना, और आमरस भी जब करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है? अगर आपको किसी ने आमरस, एक आम दिया कि मुझे आमरस बनाइए मेरे लिए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले छिलका निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना छिलका, छिलका निकालेंगे, फिर और क्या करेंगे? हाँ, रस निकालेंगे, लेकिन और क्या उसके अंदर है जो आपको नहीं चाहिए? बीज। बीज तो, बीज का तो रस नहीं करेंगे ना, छिलका भी निकालेंगे, बीज भी निकालेंगे, और जो बाकी आम रह जाएगा उसका रस निकालेंगे। अब वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि ये जो छिलका है वो ज्ञान कांड के समान है और जो बीज है वो कर्म कांड के समान है। मतलब अगर आप वेदों का उपयोग का प्रयोग कर रहे हैं केवल निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए, तो कोई रस नहीं आएगा आपको। आम का छिलका खाने से कोई मजा नहीं आता। और अगर कोई कर्म कांड कर रहा है, धनम देही रूपम देही, अगर भगवान के पास जाकर कहता है मैं ये व्रत का पालन करूंगा, ये उपासना करूंगा आपकी, ये यज्ञ करूंगा, होत्र वगैरह करूंगा, आप मुझे ये दीजिए, तो वो उस वेद के फल के बीज के समान है। लेकिन असली रस तो किसमें है? उस आम में है। वो केवल भक्ति है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है, इस वेद के वृक्ष से एक ऐसा फल निकाला है, अहो आश्चर्यम, जिसमें बीज भी नहीं है और जिसमें छिलका भी नहीं है। ऐसे कभी फल को देखा है आपने? यह है श्रीमद् भागवत का फल। इसलिए द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम, अहो महो रसिका भुवि भावकाः। हे रसिक गण, हे कृष्ण प्रेमी लोग, इसको पियो, जी भर के इसको पियो, इस रस को। और इस रस को मुक्त पुरुष लोग भी पान करना चाहते हैं। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी ने चखा हुआ है रस, इसको और भी स्वादिष्ट बनाया हुआ है। तो ये है सुखदेव गोस्वामी, ये है भागवत। तो जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, जिस भागवत से हमें इन सारे कृष्ण लीलाओं के बारे में जानकारी मिली है, वो श्रीमद् भागवत कही किसने? सुखदेव गोस्वामी, जो कि कृष्ण लीला में तोते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी लीलाएं देखी थी। तो देखिए वृंदावन में पोपट या तोते का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हैं सबसे प्रसिद्ध तोते व्रज के। साथ साथ में और भी अन्य हैं, श्रीमती राधा रानी के तोते का नाम है मंजू भाषिणी, और जैसे हम पहले कह चुके थे कृष्ण के तोते का नाम है विचक्षण, और ऐसे लाखों लाखों तोते हैं जो वृंदा देवी के पास हैं इत्यादि। तो एक बार श्री कृष्ण पौर्णमासी राधा रानी ललिता सखी मधुमंगल सुबल इत्यादि के साथ वन में थे, तो अचानक उन्होंने सुना कि शुक और सारी, शुक सारी के बीच में संवाद हो रहा था। वैसे ये बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन के शुक और शारियों के बीच में संवाद, अक्सर परस्पर बहुत ऊंचे ऊंचे दर्शनों के बारे में बात करते हैं, वेदांत इत्यादि। तो यहां बैठे हैं और एक शुक जो है वो शारी को कहता है, मतलब पुरुष जो तोता है वो स्त्री तोते को कहता है कि अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम द्विज हैं, हमने वेदांतों का पाठ किया है और हम लोग शुद्ध रहते हैं, और तुम लोग तो केवल दासी हो, क्योंकि ये जो शारी यहां है ये तो सब राधा रानी के दासी है ना। तो कहते हैं आप सब तो केवल दासी हैं, हम लोग तो द्विज हैं, विद्वान हैं, वेदांत पढ़ते हैं, तो चलो आपके लिए यहां वृंदावन स्थान नहीं है, सब अशुद्ध कर दोगे आप, चलो जाओ यहां से। तो फिर शारी कहती हैं कि अरे ये तुम्हारा स्थान थोड़ी है, ये तो राधे वृंदावने वने, ये तो राधा रानी का वन है, इसलिए हमें, हम तो उनकी दासियां हैं, तो इसलिए यहां रहने का अधिकार केवल हमारा है, बल्कि आपका नहीं है, आपको जाना चाहिए यहां से। तो शुक कहते हैं नहीं नहीं, तुम कहती हो कि पुराणों में ऐसे बताए हुए हैं राधे वृंदावने वने, लेकिन पुराणों से श्रेष्ठ प्रमाण है श्रुति, श्रुति वेद उपनिषद, श्रुतियों में बताया गया है हरिवन, वृंदावन को हरिवन कहा गया है, मतलब श्री हरि श्री कृष्ण का वन है ये, तो इसलिए हम यहां पर रहेंगे, आपको वहां से जाना चाहिए। इस तरह से दोनों के बीच में संवाद हुआ। वृंदावन में भी वाद होता है, हम देखते हैं दुनिया भर में वाद चलते रहते हैं ना, तर्क वाद, ये दुनिया ऐसे ही चलती है तर्क और वाद के ऊपर। वृंदावन में भी वाद चलते हैं बहुत सारे, लेकिन वो शुद्ध वाद है। तो वृंदावन के वाद का सबसे ऊंचा वाद का विषय क्या है कि वृंदावन के सही मालिक कौन है? जो शुक है कहते हैं ये कृष्ण मालिक है वृंदावन के, और जो शारी है वो कहते हैं नहीं राधा रानी मालिक है, वो सच्ची उनकी संपत्ति है ये वृंदावन। इस तरह से दोनों के बीच में वाद होता है। तो खैर कृष्ण भगवान ने और उनके साथ में अन्य जो बैठे थे ब्रजवासी उन्होंने सुना तो सुबल जो है बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि सुबल तो कृष्ण के सखा है, मित्र है। उन्होंने शुक को सुंदर अंगूर दिए, क्योंकि जो शुक होते हैं वो अंगूर पसंद करते हैं। वाह वाह बहुत अच्छा कहा तुमने, तुमने कृष्ण के पक्ष में बोला ना कि वृंदावन कृष्ण का, ये ले लो बहुत सारे अंगूर ले लो, बल्कि तुम्हें ये सारा जो इतने सारे पेड़ पड़े अंगूर के सब तुम्हारे लिए, ले लो खाओ जितना जी भर के खा लो। तो ललिता देवी ने कहा ऐसे, तो वो शारी के पास गई, कहा ये लो, क्योंकि शारी ज्यादा दालिम जो होता है वो पसंद करते हैं, तो उनको ढेर सारे एक सारा खेत ही दे दिया दालिम का, चलो खा लो। तो इस तरह से जो शारी है वो राधा रानी के पक्ष में बोलती हैं और उनके साथ में गोपियां भी साथ साथ जाती हैं, और जो शुक होते हैं वो कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं और सारे ग्वाल वाल उनके पीछे जाते हैं। तो यह है वृंदावन का वाद। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गए थे उन्होंने भी सब जगह भ्रमण किया वृंदावन में, और जब अलग अलग वनों में जा रहे थे एक वन से दूसरे वन और स्मरण कर रहे थे कि कौन से लीलाएं श्री कृष्ण ने यहां पर की थी, अचानक उन्होंने देखा कि दो तोते हैं वहां वृक्ष के डाले के ऊपर, शुक और शारी, दोनों अपनी भाषा में बोल रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो कन्नड़ भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, ब्रजभाषा भी जानते हैं, जो भी भाषा बोले सब भाषा जानते हैं, पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, तो वो समझ पाया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो महाप्रभु को देखकर ये शुक और शारी दोनों आके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो शुक कृष्ण का गुणगान करने लगा, कहने लगे कि देखो कृष्ण का सौंदर्य कितना अद्भुत है, ऐसे कृष्ण धन्य हो जिनकी उपस्थिति से, जिनके नामोच्चारण करने मात्र से सारे जगत का कल्याण हो जाता है। उनका सौंदर्य कितना ज्यादा है कि गोपियों के धीरज को भी वो भंग कर देता है, गोपियों को आकर्षित करता है ये, और उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं और अद्भुत हैं कि स्वयं लक्ष्मी देवी भी भ्रमित हो जाती हैं। और हमारे कृष्ण को तो देखो, उन्होंने इतने बड़े पर्वत गोवर्धन को एक खिलौना बना दिया, एक छोटा सा गेंद के समान उठा दिया। बोलो कोई सामना कर सकता है हमारे कृष्ण का? जय जयकार हो हमारे कृष्ण का। तो शारी सुन रही है, उनको आया गुस्सा, अरे कृष्ण का गुणगान कर रही है हमारी राधा रानी, क्या छोटी है क्या? तो फिर शारी राधा रानी के पक्ष में बोलने लगी, कहने लगी देखो हमारे श्रीमती राधा रानी के गुण क्या हैं, उनका प्रेम, उनका सौंदर्य, उनके गुण, ये इतने सद्गुण संपन्न हैं कि स्वयं श्री कृष्ण को भी आकर्षित करते हैं। तुम कहते हो कि श्री कृष्ण सभी को मोहित करते हैं, अरे लेकिन हमारे जो राधा रानी है कृष्ण को भी मोहित करते हैं, याद रखना। तो फिर शुक कहने लगे कि अरे हमारे कृष्ण ये तो मदन को भी मोहित करते हैं, उनका नाम है मदन मोहन। तो शारी कहने लगी हमारे राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, विस्मित हो गए देखकर सुंदर संवाद। फिर ऐसे बातचीत चलती रही, फिर दोनों शुक और शारी उठकर वापस जंगल में उड़ गईं। तो ऐसे ये है वृंदावन के शुक और शारी, वृंदावन के तोते, इनकी लीला चलती है वृंदावन में। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है वृंदावन में तोतों का रहना। तो खैर ये तीन प्रमुख पक्षियां हैं वृंदावन के, मयूर, कोयल और पोपट, ये तोते। तो ये तीन पक्षी एक श्रेणी के हैं, और क्यों इनको एक श्रेणी में डाला जाता है और दूसरे पक्षियों को दूसरे श्रेणी में क्यों डाला जाता है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो अन्य कौन से पक्षियां हैं वृंदावन में? कई हैं, लेकिन इनमें से केवल तीन चार और जो प्रमुख हैं उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक है चकोर। चकोर का नाम आपने सुना है ना। चकोर की विशेषता यह है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं केवल चांद को देखकर, चांद के किरणों को देखकर बस वो संतुष्ट रहते हैं। इसी से वो पोषण प्राप्त करते हैं चांद के किरणों से। ठीक उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी चकोर की तरह श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद चांद जैसे कमल के सौंदर्य से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ब्रजवासी केवल कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखकर ही जीते थे। गोवर्धन लीला में आप सबने सुना है कि जब कृष्ण ने गोवर्धन को अपने छोटी उंगली के ऊपर 7 दिन और 7 रात धारण करके रखा था तो उस समय सारे ब्रजवासी केवल श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर देख रहे थे जैसे चकोर पक्षी देखते हैं चांद की ओर। इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि 7 दिन 7 रात कैसे बीत गए हैं। उनको तो लगा कि बस एक क्षण मात्र बीत गया है और बाहर मूसलधार वर्षा हो रही थी, बहुत ठंडी हवा बह रही थी, इंद्रदेव का कार्य था ये। लेकिन उनको कोई कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि केवल कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देख रहे थे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित होता है, आकर्षित होता है, इस सारे ब्रह्मांड का कष्ट उसको स्पर्श नहीं कर सकता। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितोन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति को भक्ति का रस मिल जाता है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न ततः, वो किसी और चीज को इससे अधिक मूल्यवान नहीं समझता है। और जब कठिन से कठिन परिस्थिति भी आती है उसके जीवन में, गुरु नापि न विचालेते, विचलित नहीं होता है। तो इसलिए वृंदावन के जो निवासी हैं ब्रजवासी, वो चकोर पक्षी के समान हैं, केवल श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसी से अपने प्राण को अपने शरीर के भीतर रखते हैं। और अगर गोपियां और अन्य ब्रजवासी कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद अपने प्राण अपने शरीर में रख पाए तो उसके लिए केवल एक कारण था, या 2 कारण कहिए। एक कि उनके मन में एक आशा थी, आशाबद्ध आशा थी कि आज अवश्य कृष्ण लौटकर आएंगे। इसी आशा में उनके प्राण अभी तक शरीर में थे। और दूसरा कारण यह था कि अपने अंतःकरण में वो श्री कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन 24 घंटे किया करते थे। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अपने अंतःकरण में श्याम सुंदर का रूप देख रहे थे। क्यों देख पा रहे थे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्योंकि इनके आंखों के ऊपर कृष्ण प्रेम का अंजन लगाया हुआ था। आज प्रवचन के पहले हम ये श्रीत कमला श्लोक गा रहे थे ना, जिसमें भगवान का सुंदर रूप का वर्णन आ रहा है। अभिनव जलधर सुंदर हे, अभिनव जलधर सुंदर हे, धृत मंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय देव हरे, जय जय देव हरे। तो इस तरह से मानस चंद्र चकोर जय जय देव हरे, न केवल कृष्ण के भक्त चकोर हैं क्योंकि वो सुंदर कृष्ण के मुखारविंद को हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण भी चकोर हैं। उनके लिए चांद कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्री कृष्ण भी राधा रानी की ओर देखते हैं जैसे चकोर चांद की ओर देखता है। तो इस तरह से ये चकोर का भी बड़ा महत्व है वृंदावन में। और एक पक्षी है चंद्रवाक, जो कि गोल बतक के समान है और वे हमेशा सरोवर में नदियों में निवास करते हैं और रात को एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। बड़े सुंदर पक्षी हैं ये भी। तीसरे हैं चातक, और ये चातक भी, इनकी विशेषता ये है कि एक बार जल जमीन के ऊपर गिर जाता है तो फिर उसका पान नहीं करते। तो कौन सा पानी पीते हैं फिर? बरसात के पानी पीते हैं केवल। जब बारिश होती है तो अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं आ करके, पर जितना पानी उनके मुंह में से गिर जाता है बस उतना पीते हैं। अन्य पक्षियां जो हैं, आपने देखा होगा वर्षा के समय इधर उधर आश्रय के लिए कोई जाते हैं, छांव के लिए जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, किसी छत के नीचे बैठ जाते हैं। वो गीला होना नहीं चाहते, उनको पानी इतना पसंद नहीं है। मोर जो होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है बारिश के समय, वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्य पक्षियां वो घबरा जाते हैं। लेकिन ये जो चातक है ऐसे नहीं, जब बारिश होता है तो बस अपने पंखों को खोल कर बस आनंद से हर्षित होकर उड़ने लगते हैं और मुंह खोल के बारिश के पानी पीते रहते हैं ये पक्षियां। तो ठीक उसी तरह से ये भक्त जो होते हैं ये भी चातक पक्षी के समान है। जिस तरह से चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर रहता है, उसी तरह से जो भक्त होते हैं वो केवल कृष्ण के कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं और किसी भी दूसरी चीज को अपना जीवन का आधार नहीं बनाते हैं, किसी भी दूसरी चीज का आश्रय नहीं लेते हैं। अन्य पक्षियां जो हैं सरोवरों का, कुंडों का, नदियों का आश्रय लेते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन चातक ऐसे नहीं करता। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्त और किसी भी दूसरे चीज, दूसरे वस्तु का आश्रय नहीं लेते हैं। रूप गोस्वामी एक जगह प्रार्थना करते हैं कि मैं भी एक चातक पक्षी के समान हूं। चातक पक्षी जब बरसात के बादल को देखते हैं तो वो हर्षित हो जाते हैं, चाहे वो बादल से पानी आए या वज्र आए, बादल गर्जना करें या पानी बरसाएं, फिर भी चातक पक्षी उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। ठीक इसी तरह से रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे आप मुझे आलिंगन करें या आप मुझे मर्माहत करके ठुकरा दें, निकाल दें, आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर ही रहेंगे हर अवस्था में। तो भक्तों की तुलना चातक पक्षी से भी की जाती है। और भी पक्षियां हैं वृंदावन के सरोवरों में जो पाए जाते हैं, वो कौन है? हंस। हंस भी बहुत सुंदर पक्षी हैं और उनकी चाल इतना मधुर होता है कि अगर कोई बहुत अच्छी तरह से चल रहा है तो कहते हैं देखो हंस के समान चल रहा है, और अगर कोई अच्छी तरह से चल रहा है धप 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 करके चलता है कहते हैं हाथी की चाल है उसकी, लेकिन किसी की बहुत मधुर चाल है तो क्या कहते हैं? देखो हंस की चाल है इसकी। तो भक्ति मार्ग जो है ये, इसमें काव्यात्मक जो उपमाएं हैं, दृष्टांत है वगैरह, इसमें बहुत पाए जाते हैं। और हंस की विशेषता ये भी है कि हमेशा सुंदर जगह में, मधुर रमणीय स्थान में हमेशा वो रहते हैं, जहां सरोवर हैं, जहां फूल खिले हुए हैं, जहां पर मधुर पवन है, हरियाली है, ऐसे स्थानों में हंस निवास करते हैं। और कहां रमण करते हैं? जो कमल पुष्प हैं उनके जो डांट होते हैं स्टेम्स, उसमें अपने तोत को लगाकर नीचे तोत को डाल के वहां पर रमण करते हैं। बहुत ही सुंदर ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं और अंदर पानी में कूद के इन चीजों में अपने चोंच के साथ और खेलते हैं, और उनके जो गले हैं वो भी कमल के समान सुंदर ही लगते हैं। कई ऐसे हंस हैं जिनको राज हंस कहते हैं। राजहंस जो बड़े प्रकार के हंस होते हैं, और उनकी विशेषता यह है कि दूध और पानी पानी के मिश्रण से वो दूध को निकाल सकते हैं। ये विशेषता होती है राजहंस की। इसलिए भक्त को भी राजहंस के समान बनना चाहिए। ये संसार में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उनमें से जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है, जो कृष्ण भगवान की सेवा के लिए लाभदायक है, उन्हीं चीजों को हमें स्वीकार कहना करना चाहिए, अन्य चीजों को त्याग करना चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम्। बताया जाता है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे ऐसे ग्रहण करना चाहिए कि जैसे राजहंस दूध को ग्रहण करता है पानी में से, और उन चीजों को जो प्रतिकूल है ऐसे त्यागना चाहिए जैसे राजहंस पानी को त्याग देता है। राजहंस के बारे में कई तुलनाएं हैं। राजा कुलशेखर जो एक आलवार थे, श्री संप्रदाय के महान भक्त, उन्होंने सुंदर श्लोक कहा है। कौन सा है श्लोक को जानते हैं? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्रैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। राजा कुलशेखर कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके पद कमलों, चरण कमलों, कमल जो हैं वो कमल पुष्प के डांट के समान है, और उन इनको जो जाली जैसे बन गई है उसमें मेरे मन रूपी राजहंस को रमण करने दीजिए। मतलब इसी क्षण मैं आपके सुंदर लीलाओं में मग्न हो जाना चाहता हूं, मेरे मन को केवल आपके सुंदर चरण कमलों में केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफपात वित्त ही कंठ अवरोधन स्मरणम कुतस्ते। वो कह रहे हैं कि मृत्यु के समय, प्राण प्रयाण समय, जब मृत्यु के समय प्राण त्यागने का समय आ जाता है तो कंठ में कफ वात पित्त ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, आदमी अपने होश को खो बैठता है, उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है, कृष्ण का नाम कैसे भले ले सकता है वो, स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे मैं उस समय कर पाऊंगा। इसलिए इस समय जबकि मेरा मन जो कि राजहंस के समान है, आपके चरण कमलों के जो कि कमल पुष्प के समान है उनमें रमण कर रहा है, इसी समय मेरा प्राण आप खींच लीजिए शरीर के बाहर, जबकि मेरा शरीर तंदुरुस्त है। इस तरह राजा कुलशेखर भी राजहंस की तरह बनना चाहते हैं। ये राजहंस और अन्य हंस भी इतनी सुंदर ध्वनि निकालते हैं अपने मुंह से, लेकिन जब वो श्री कृष्ण के नूपुरों की ध्वनि सुनते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि अरे इतनी सुंदर ध्वनि, इसके सामने हमारी बोली तो कुछ भी नहीं है, मेंढकों की बोली के समान है हमारी बोली कृष्ण भगवान के नूपुरों की झनक झनझन आवाज से। इसलिए शर्मिंदा होकर वो अपना मुंह नीचे कर देते हैं, पराजित हो जाते हैं। एक बार जटिला, जटिला कौन है? राधा रानी की सास। और राधा जटिला के मन में चिंता क्या रहती है हमेशा? राधा रानी कृष्ण के पास तो नहीं जा रही है। तो एक बार राधा रानी दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो जब बहू घर में दिखाई नहीं पड़ती तो सास को चिंता हो जाती है ना कि कहां गई बहू। तो इसलिए जटिला ढूंढ रही है राधा रानी को, तो कहां ढूंढे, इतना बड़ा वन है, कहां गई होगी राधा। तो क्या करने लगी जटिला? वो पहले चले गए सरोवर, क्योंकि सरोवर में हंस लोग जा रहे थे, तो हंस के पीछे पीछे गई। क्यों? क्योंकि ये हंस है, ये शायद राधा रानी के नूपुर के झनकार को सुनकर पीछे पीछे जा रहे होंगे, तो हम भी हंस के पीछे गए तो राधा रानी को ढूंढ पाएंगे। तो ये है कृष्ण लीला। इस तरह से हंसों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी वृंदावन में है। और सारस नाम के पक्षी भी हैं जो कि काले रंग के होते हैं, और सारस और सारसी जो हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, उनकी जोड़ी। ये ऐसी एक पक्षी की जाति है जिसमें पति पत्नी कभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, जीवन भर साथ में रहते हैं। तो गोपियां जब विरह में होती हैं, जब कृष्ण आते नहीं हैं या कृष्ण चले जाते हैं, तो वो इन सारस पक्षियों की ओर देखते हैं, कहते हैं देखो ये सारस कितने भाग्यशाली हैं, ये लोग आपस एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, देखो हमारा दुर्भाग्य देखो, कृष्ण तो हमेशा हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस समय अपने आप को, अपने भाग्य को कोसते हैं और सारस के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा वृंदावन में और कई पक्षियां हैं, जैसे खंजन है और हरितकी है और लाखों लाखों ऐसे अलग अलग योनियां हैं। तो खैर इन प्रमुख पक्षियों के का वर्णन अब हो चुका, अब देखते हैं, वैसे समय काफी हो गया वर्णन करते करते, तो खैर आप सुनना चाहते हैं और कि थोड़ा केवल श्लोक का पाठ करेंगे और फिर कल सुबह इस श्लोक के बारे में वर्णन ज्यादा बढ़ाएंगे। हम सोच रहे थे कि शायद आज श्लोक समाप्त कर देंगे, लेकिन वर्णन कैसे चलता गया तो काफी समय बीता हुआ है, तो इस श्लोक का पाठ करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। तो ये है 14वां श्लोक वेणु गीत का, जिसमें गोपियां पक्षियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। तो आइए देखते हैं गोपियां क्या कह रही हैं। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। आरुह्य यो द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति नीलितदृशो विगतान्यवाचः। श्रील प्रभुपाद द्वारा। अरे माई, इस जंगल में सारे पक्षी कृष्ण का दर्शन करने हेतु वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर उड़कर बैठ गए हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते। निस्संदेह ये पक्षी महामुनि की कोटि में हैं। वृंदावन की पक्षियों की जय, पावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है, टीकाएं हैं तो आप।
शिव जी पार्वती को हरि कथा सुना रहे थे और एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा था और पार्वती जी सो गई थी, तो बाद में जब शिव जी ने पूछा कि क्या सुना, हाँ हाँ करते हैं, तो तोते ने जो हाँ का जवाब दे दिया, तब शिव जी जो है थोड़ा क्रुद्ध हो गए, उसके पीछे दौड़े और शुक जो है वो तोता जो है सीधा व्यास जी की पत्नी जब जमाई ले रही थी उनके मुंह के अंदर प्रवेश कर गया, तो वहां पर भी उन्होंने उस तोते ने थोड़ा हरि कथा का श्रवण किया था। वही लीला है, वही है ना।
बिल्कुल वही शुकदेव गोस्वामी है ये। सही है, वही शुक का वर्णन है ये। वैसे नित्य लीला में तो शुकदेव जी राधा रानी के साथ हमेशा रहते हैं, ये तो सब इस ब्रह्मांड की लीलाएं हैं। नित्य रूप में वो गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, केवल लीला मात्र यहां पर आकर यहां वो शिव जी के पास जाते हैं, यहां पर व्यास देव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, ये सब भौम लीलाएं हैं, लेकिन मूल रूप में वो गोलोक में रहते हैं। जैसे कि श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ तो अपने पति को छोड़कर वो कृष्ण के पास आई थी, यही तो वृंदावन का रस है। जब कोई भक्त कृष्ण को प्रेमी समझकर प्रेम करता है, इसको माधुरी रस कहते हैं, तरह तरह के रस हैं, जैसे दास्य रस जिसमें भक्त अपने आप को दास समझता है, सख्य रस जिसमें भक्त कृष्ण को अपना सखा समझता है, वात्सल्य रस जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र अपना बच्चा समझता है और अपने आप को माता या पिता, और माधुरी रस जिसमें भक्त कृष्ण को प्रेमी समझता है। तो माधुरी रस में दो भाग हैं, एक को परकीय रस कहते हैं, दूसरे को स्वकीय रस। वैसे भी पांचों रसों में से माधुरी रस सबसे ऊंचा माना जाता है, और इस माधुरी रस में भी परकीय रस ऊंचा माना जाता है स्वकीय से ज्यादा। स्वकीय मतलब जो विवाह के भीतर जो कृष्ण को प्रेमी मानते हैं वो स्वकीय रस है, जैसे कि द्वारका की महिषियां सत्यभामा रुक्मिणी जाम्बवती भद्रा मित्रविंदा इत्यादि, इनका स्वकीय रस है द्वारका का, और वृंदावन के गोपियों का रस है परकीय रस, मतलब विवाह के बाहर। वैसे हम इन लीलाओं को इस भौतिक जगत के नीति के दृष्टि से नहीं देख सकते। जो भगवान के धाम में सबसे ऊंचा है वो इस भौतिक जगत में सबसे नीचा है, क्योंकि आखिर ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में तो आप जानते हैं, वृक्ष की छाया, वृक्ष का प्रतिबिंब आप जल में देखेंगे तो जो वृक्ष का सबसे ऊंचा है स्थान वो पानी में सबसे नीचे दिखेगा। तो भगवान के धाम में जो सबसे ऊंचा रस है वो यहां पे अनैतिक माना जाता है, और है भी। जब तक हम ये भौतिक जगत में हैं, इस नीति का पालन हमें बहुत सख्ती से करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम भी परकीय रस का स्वाद ले रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता, ये तो महामाया का खेल है। तो यहां जो व्यक्ति ऐसे करेगा उसको तो दंड मिलेगा, वो तो दंडनीय होगा यमराज की दृष्टि में, उसको यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, बहुत दर्दनायक है तो यमराज के डंडे, खास करके ऐसे जो व्यभिचार करते हैं। तो यहां पे ये सबसे जघन्य कार्य माना जाता है, लेकिन अपने मूल रूप में शुद्ध रूप में असली रूप में ये रस बहुत मीठा है, बहुत मधुर है। असलियत में ये सब योग माया के प्रभाव में चल रहा है। जैसे यहां सभी कुछ महामाया के वशीभूत है, वहां पर भगवान के धाम में सब कुछ योग माया के निर्देशन के अनुसार चल रहा है। वहां भी माया है लेकिन योग माया, जिस माया में पढ़कर वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को भगवान नहीं समझते हैं, पहचान नहीं पाते हैं भगवान को। इसलिए योग माया के प्रभाव से भी गोपियों और कृष्ण भगवान के बीच में जो प्रेम है, उनके रस को, उस प्रेम की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, मिठास को बढ़ाने के लिए ये परकीय रस अधिक लाभदायक है। तो फिर योग माया के योजना से सारे गोपियों का विवाह हो जाता है, उनके पति होते हैं, उनके सास ससुर होते हैं, ये सब योग माया की लीला है। क्योंकि जब ऐसी अवस्था रहती है और ऐसे तनाव पूर्ण स्थिति में से उनको कृष्ण के पास जाना पड़ता है तो उसमें भक्ति का रस और बढ़ जाता है। जबकि कोई चीज सहज उपलब्ध होता है तो इतना मीठा नहीं होता, जब कठिनाई के बाद कोई चीज प्राप्त की जाती है तो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है वो चीज। तो अब गोपियों को और खास करके राधा रानी को बहुत छुपा छुपी करके निकलना पड़ता है। जटिला तो हमेशा सतर्क रहती है, कहाँ है राधा रानी, तो जटिला से छूटना पड़ता है, जटिला की पुत्री कुटिला से छूट के जाना पड़ता है, और पति अभिमन्यु भी है उनसे भी छूट के जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि माधुर्य रस का स्वाद बढ़ जाता है। केवल योग माया की दृष्टि से ये एक विवाह है, लेकिन वास्तव में राधा कृष्ण की ही जोड़ी है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, ये परिपूर्ण अवस्था है वहां की। और ये सारे पति सास वगैरह ये सब अपने अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं कृष्ण के सुंदर नाट्य लीला में, और केवल इसलिए कि राधा कृष्ण के लीला में रस बढ़े। वृंदावन की खूबी यही है कि चाहे कोई किसी भी रस में क्यों ना हो, चाहे वो दास्य रस में हो, सख्य रस में हो, वात्सल्य रस में हो, माधुरी रस में हो, ये सारे अपने अपने सेवाएं करते हैं केवल राधा कृष्ण के माधुरी रस को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। गोलोक वृंदावन में माधुर रस का प्राधान्य है और अन्य जो भी रस हैं वहां पर वो केवल इस माधुर रस का पोषण करती हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। इसलिए राधा रानी का तथा कथित विवाहित होना इससे कोई निंदनीय बात नहीं है, क्योंकि ये हमें इस संसार के नीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ठीक है कि भगवान ब्रह्मा जी को चतुःश्लोकी भागवत सुनाते हैं, कौन से श्लोक हैं वो श्रीमद् भागवत में पाए जाते हैं। अहम एवासम एवाग्रह से शुरुआत होते हैं ये चार श्लोक, तो जिनको पढ़ना है ये श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इन चार श्लोकों के ऊपर बड़े लंबे लंबे तात्पर्य लिखे हैं, क्योंकि ये भागवत का सार है और केवल इसके रस को बढ़ा 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 कर आचार्यों ने उसको स्वादिष्ट किया है। और जब सुखदेव गोस्वामी के पास आया तो शुक ने उसको चखा और मीठा बना दिया। बाद आप सब यहाँ पर कष्ट लेकर समय निकाल कर यहाँ कथा के लिए आए, तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी आप आएंगे, और परसों जन्माष्टमी है, कल परसों और उसके बाद वाले दिन में भी यहाँ कार्यक्रम चलते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।